का स्वागत है आज के बुधवार के कार्यक्रम में। दूसरे अध्याय में अब भगवान सांख्य योग का जो दर्शन अर्जुन को दे रहे हैं, अब केवल कुछ चंद श्लोक बाकी रह गए हैं। आज जो हम श्लोक लेने वाले हैं, हरे कृष्ण, और अगले बुधवार का श्लोक, और उसके पश्चात फिर भगवान अब धर्म और कर्म के विषय में अर्जुन को ज्ञान देंगे इस दूसरे अध्याय में। तो अब तक भगवान सांख्य योग में अर्जुन को बता रहे थे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, तर्क के दृष्टिकोण से, यहां तक कि नास्तिकवाद का भी इस्तेमाल करते हुए भगवान अर्जुन को बता रहे थे क्यों अर्जुन को इस देह के लिए शोक नहीं करना चाहिए या उन देहों के लिए शोक नहीं करना चाहिए जो कि उनके सामने हैं, और एक न एक दिन वो देह अंत तो होने ही वाले हैं। और आज का जो श्लोक है इसमें भगवान अर्जुन को आत्मा के विषय में थोड़े अलग ढंग से समझा रहे हैं कि कैसे ये आत्मा इस हमारे भौतिक संसार में हमारे भौतिक मस्तिष्क को लेते हुए उसके परे, हमारी बुद्धि के परे, और कैसे ये आश्चर्यजनक है ये आत्मा। चाहे हम कितना भी तर्क लगा लें, चाहे कितनी भी बुद्धि लगा लें, कितना भी हमारा विज्ञान लगा लें, ये इन सब सूत्रों से आत्मा को कोई समझ नहीं पाएगा। इसलिए भगवान कहते हैं आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवत् चैनमन्य श्रुणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवत् चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवत् चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। भगवान बता रहे हैं किस प्रकार से आत्मा आश्चर्यजनक दिखता है, आश्चर्यजनक इसका वर्णन किया जाता है, आश्चर्यजनक इसका श्रवण होता है। हर प्रकार से आत्मा जो है वो आश्चर्यों से भरा हुआ है, फुल ऑफ सरप्राइजेस। द सोल इज फुल ऑफ सरप्राइजेस एंड अमेजमेंट। इट्स अमेजिंग, सिंपली अमेजिंग। जैसे आप यदि किसी का गुणगान कर रहे हो, मान लीजिए आप हिमालय का गुणगान कर रहे हो, तो तो हिमालय जाकर आप आए हो और हिमालय की सुंदरता किसी को बता रहे हो, और इतनी अनगिनत चीजें हैं बताने के लिए कि अंततः आप कहते हो कि इट इज सिंपली अमेजिंग, इट्स एन अमेजिंग प्लेस, बहुत ही जबरदस्त जगह है, ऐसे आप बोल देते हो। तो ऐसे भगवान अब इतने विस्तार से समझा रहे थे कि आत्मा के ये गुण हैं, आत्मा के वो गुण हैं, आत्मा को इस प्रकार से समझा जा सकता है, और अंततः भगवान बता रहे हैं कि अर्जुन ये समझ लो कि नहीं समझ पाओ। प्रभुपाद को उनके एक शिष्य ने पूछा, प्रभुपाद आपने लिखा है कि कृष्णा कैन नेवर बी अंडरस्टूड कंप्लीटली, सो देन व्हाई हैव यू रिटन सो मेनी बुक्स? प्रभुपाद सेड दैट इज द रीजन सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दैट यू कैन नेवर अंडरस्टैंड कृष्णा कंप्लीटली। तो ये आश्चर्यजनक श्लोक है आज हमारे लिए जानने के लिए। कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे आज के श्लोक से इस प्रकार से हैं, कोई विरला ही जीवात्मा को आश्चर्य के समान देखता है, आश्चर्य के समान वर्णन करता है और आश्चर्य के समान श्रवण करता है। एक ही जीवात्मा सभी प्रकार के छोटे बड़े शरीरों को चेतन करता है और सभी प्रकार के शरीरों को संचालित करता है, इतना होने के बावजूद कई हैं जो सुनकर देखकर भी नहीं जान पाते कि आत्मा है इस शरीर के अंदर और ये शरीर और आत्मा अलग है। तो हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले ये जो आश्चर्य है कि आश्चर्यजनक तरीके से देखना इस आत्मा को, पश्चति, आश्चर्यवत पश्चति, पश्चति का अर्थ है देखना। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि अब तक भगवान बता रहे थे कि आत्मा कितना सूक्ष्म है, ये आत्मा के जो आध्यात्मिक गुण हैं वो भगवान बता रहे थे। तो यदि आत्मा इतना सूक्ष्म है, आत्मा इतना आध्यात्मिक है, तो इतने सूक्ष्म आध्यात्मिक आत्मा को हम आंखों से कैसे देख सकते हैं? तो भगवान ऐसे क्यों कह रहे हैं कि पश्यति, आश्चर्य से देखो, या आश्चर्य से देखा जाता है इस आत्मा को। अब जैसे केशाग्र शटभागस्य शटदा कल्पितस्य च, उपनिषदों में बताया गया है कि केश के अग्र भाग को लेकर आप उसे उसके 100 विभाजन कीजिए और उसमें से एक के और 100 विभाजन कीजिए, 1/10,000 द टिप ऑफ द हेयर, ये है आत्मा कितना सूक्ष्म, किसी भी उपकरण से इसे देखा नहीं जा सकता। तो फिर भगवान सर्वप्रथम ये क्यों कह रहे हैं पश्यति, कि देखो अर्जुन। ये पश्यति का अर्थ क्या है? अंडरस्टैंड, समझना, देखकर कैसे समझना? बहुत सी चीजों को हम कैसे समझते हैं? सुनकर। तो भगवान यहां पर श्रुत्वा प्येनम, सुनकर, शास्त्र चक्षु अर्जुन को कह रहे हैं कि अर्जुन अपने आंखों से तुम नहीं देख पाओगे, अपने कानों से देखना है। अब देखिए, ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कोई तालमेल नहीं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कानों से कोई देख पाता है, कानों से सुना जाता है, लेकिन भगवान कह रहे हैं कानों से इसे देखो, इस आत्मा के आश्चर्य को अपने करणों से देखो। तो पश्यति का अर्थ है, जैसे कि आप लोगों ने कहा, समझना। तो समझ में तभी आएगा जब यथा अनुरूप अर्जुन भगवान से जो श्रवण कर रहे हैं उसे समझकर जब वो देखेंगे। तो भगवान यहां पर ये बता रहे हैं कि अर्जुन तो अपनी आंखों से मत देखते जाओ उनको, जितना तुम अपनी आंखों से देखोगे उतना भ्रमित होगे, क्योंकि ये आंखें हर समय धोखा देती हैं हमें। ये आंखों से हमें जो दिखता है वो कानों की तुलना में बहुत अलग होता है। बहुत बार आपने किसी को देख लिया आपकी आंखों से, या आप कुछ खरीदने गए बाजार में, आपकी आंखों ने देखा, पैकेजिंग इतना अच्छा है, और कोई व्यक्ति आपको आके बोलता है डुप्लीकेट है। जैसे ही बोल दिया कि डुप्लीकेट है, तो अब वो आंखें उसी वस्तु को अलग दृष्टिकोण से देख रही है। तो इसलिए भगवान यहां पर अर्जुन कि दृष्टि को बदलने के लिए पूरी भगवद गीता सुना रहे हैं। तो इसलिए इसके पश्चात भगवान ने कहा कि कोई विरला ही है जो जीवात्मा को आश्चर्य के समान वर्णन एवं श्रवण करता है। अब इसका वर्णन और श्रवण भी बहुत आश्चर्यजनक है, इसलिए भगवान ने तथैव इस शब्द का इस्तेमाल किया, जिसका अर्थ है तथा एवं एव, उसी प्रकार और निश्चित रूप से। उसी प्रकार और निश्चित रूप से का अर्थ है, भगवान बता रहे हैं गुरु परंपरा में, जिस प्रकार से गुरु परंपरा में बड़े बड़े महाजनों ने इस आत्मा को देखा, निश्चित रूप से अर्जुन तुम उस गुरु परंपरा में समझो। न अपने इन भौतिक चर्म चक्षु से। तो अब श्रील प्रभुपाद के जीवन में हमें यदि देखें तो प्रभुपाद अमेरिका में, उन्होंने जब हिप्पियों को प्रचार करना शुरू किया तो हिप्पियों को प्रभुपाद श्वेत श्वतार उपनिषद, कट उपनिषद, मुंडक उपनिषद, ये अलग अलग पुराण और उपनिषद, इनसे कोट कर बोलते थे कि खट उपनिषद में कहा गया है कि आत्मा का ये स्वरूप है। तो अभी वो लोग, उनको पता नहीं उपनिषद क्या होता है, खट उपनिषद क्या होता है, कौन सी भाषा है। तो आत्मा श्रील प्रभुपाद वहां पर स्थापित करना चाहते थे कि मैं जो तुम लोगों को आत्मा के बारे में बता रहा हूं, ये मैंने अपने रसोई घर में इसको कुक नहीं किया है, ये तथैव, जैसे भगवान स्वयं, अब भगवान तो बोल सकते ना, मैं बोल रहा हूं मानो, भगवान कहते नहीं, उसी प्रकार से जिस प्रकार से बड़े बड़े गुरुजनों ने इसे समझा है निश्चित रूप से, उस प्रकार से तुम समझो। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान गुरु परंपरा पर इतना जोर दे रहे हैं यहां पर। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद अक्सर इस बात को बार बार दोहराया करते थे, ये आत्मा हम हैं, शरीर नहीं है। इस कितनी बार प्रभुपाद ने अपने प्रवचनों में, अपने पुस्तकों में दोहराया। और एक बार तो उनके शिष्य ने उनसे पूछ भी लिया कि प्रभुपाद हम समझ गए, अब थोड़ा आगे। प्रभुपाद ने कहा यदि तुम समझ गए होते तो ये शरीर नहीं होता तुम्हारा सामने। हमारे इस्कॉन के देवामृत महाराज वो एक प्रवचन में कह रहे थे, एवरी डे व्हेन वी सी आवर मटीरियल बॉडी इन फ्रंट ऑफ अस इन द मिरर वी शुड बी अशेम्ड that I have still not accomplished the mission of this human form of life. अभी तक ये शरीर है। तो इसलिए गुरु परंपरा में जब तक हम इसे नहीं समझेंगे, और यहां पर भगवान ये तथैव शब्द के द्वारा गुरु परंपरा पर जोर देते हुए ये इसलिए बता रहे हैं कि ये आश्चर्यजनक आत्मा का साक्षात्कार कृपा से हो सकता है। चाहे उपकरण ले लो, चाहे तर्क लगाओ, जो भी कुछ अलग अलग प्रकार से प्रयास करो, जब तक कृपा नहीं होगी तब तक ये आत्म का साक्षात्कार नहीं होने वाला। अब आगे भगवान ने कहा कि एक ही जीवात्मा सभी प्रकार के छोटे बड़े शरीरों को चेतन एवं संचालित करता है। अब देखिए कितने अलग अलग प्रकार की योनियां हैं, कितने शरीर हैं, और इन सब शरीरों में ये आत्मा नहीं बदलता। ऐसा नहीं कि शरीर बदल गया तो आत्मा बदल गया। जैसे वही आत्मा, वही व्यष्टि आत्मा एक चींटी में भी है और एक हाथी में भी है। अब इसे हम एक बल्ब के उदाहरण से समझें। अब देखिए कितने सारे बल्ब हैं इस कमरे में। मान लीजिए केवल ये एक बल्ब को चालू हम रखें, बाकी सब को बंद कर दें, तो ये एक बल्ब कितनी रोशनी देगा? वहां पर जो अंधेरा है कुछ दिखाई नहीं देगा इस बल्ब की रोशनी से, है ना? तो बल्ब एक है, जितना बड़ा कमरा होता जाएगा उतनी रोशनी उसकी कम दिखाई देगी, है कि नहीं? जितना ही कमरा छोटा होता जाएगा उतनी बल्ब की रोशनी आपको और अच्छी से दिखाई देगी, या बल्ब अच्छी से आपको दिखा पाएगा जो भी दिखाना। तो अब यदि बल्ब की तुलना आत्मा से की जाए तो एक आत्मा चींटी के शरीर, कितना बड़ा शरीर होता है चींटी का, छोटा सा, और वही आत्मा को हाथी के शरीर में डाल दो तो कोई पूछेगा कि भाई अब सूंड से पैर तक चेतना पहुंचने में तो बहुत टाइम लग जाएगा ना, क्योंकि अब ये आत्मा चींटी से हाथी के शरीर में गया है। जैसे कि ये बल्ब अब छोटे कमरे से बहुत बड़े कमरे में चला दिया, तो वैसे ही आत्मा चींटी के शरीर से हाथी के शरीर में गया तो उसको अपना सप्लाई पूरा सब जगह पे व्याप्त करने के लिए मुश्किल होगा ना, टाइम लगेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। इसलिए तो आश्चर्य कि वही आत्मा, और वो भी कितना छोटा, हमने उसका वर्णन किया, इतना छोटा ये व्यष्टि आत्मा, और चींटी तो बहुत बड़ी हो गई, कई तो ऐसे ऐसे हैं कीटाणु जीवाणु की वो हम उनको आंखों से भी नहीं देख पाते, उसके अंदर भी है, और वही जब उसका जन्म पुनर्जन्म होता रहता है तो आगे चलकर वो किसी हाथी के और कितने सारे देखे शरीर। इसलिए हम केवल ये इतने सारे शरीर के अंदर ये आत्मा कैसे व्याप्त है, अपनी चेतना कैसे फैलाए हुए, केवल हम अपने नाखून काटते हुए समझ पाएंगे, फिर भी नहीं समझ पाएंगे, केवल ये समझ पाएंगे कि नाखून काट ले। अच्छा, एक और यदि हम उदाहरण लें कि कैसे ये आत्मा संचालित करता है, एक तो चेतना फैला रहा है सब जगह, चाहे कितना भी बड़ा महाकाय शरीर हो, और एक है संचालित कर रहा है ये आत्मा। अब यदि एक ड्राइवर का उदाहरण ले, अब देखिए कोई ड्राइविंग सीखता है तो एक है मोटरसाइकिल सीखता है, फोर व्हीलर सीखता है, फिर उससे बड़ा ट्रक सीखता है, پھر ریل گاڑی سیکھتا ہے، ہوائی جہاز سیکھتا ہے. تو اب جس کو موٹر سائیکل چلانے کا لائسنس ملا ہے وہ یدی جائے ہوائی جہاز چلانے کے لیے کہ میں ڈرائیور ہوں نا، چاہے موٹر سائیکل ہو چاہے ہوائی جہاز ہو، کیا فرق پڑتا ہے؟ لائسنس ہے دیکھو نہیں. تو ہر ایک اس گاڑی کے لیے اس کو الگ ٹریننگ لینی ہوتی، موٹر سائیکل کے لیے الگ، کار کے لیے الگ، وہ ٹریکٹر کے لیے الگ، ٹرک کے لیے الگ، ہوائی جہاز کے لیے الگ. لیکن یہ آتما دیکھیے، یہ آتما وہ چینٹی کو بھی ڈرائیو کرتا ہے اور ہاتھی کو بھی ڈرائیو کرتا ہے. ایسا نہیں کہ بھی ہاتھی کے شریر میں الگ سے لائسنس لینا پڑے گا، الگ سے کہیں ٹریننگ میں جانا پڑے گا. ہاتھی کو چلانا ہے نا، اتنے بڑے ہاتھی کو چلانا ہے. تو آتما کہیں یہاں وہاں ٹریننگ کے لیے نہیں جاتا ہاتھی کو چلانے کے لیے. اچھا ٹھیک ہے، ہاتھی کو تو چلا دیا، اس کے بعد میں پکشی میں چلا گیا تو اب تو اڑنا ہے بھائی، تو اڑنے کی ٹریننگ لینی چاہیے آتما کو. اور پھر مچھلی بن گیا تو تیرنے کی ٹریننگ نہیں. اسی لیے آتما آشچرجنک ہے. اب اس بھوتک سنسار میں یدی ہم دیکھیں کہ بنا ٹریننگ کے کوئی اس پرکار کے اپکرن نہیں چلا سکتا یا اڑا سکتا یہ گاڑیاں اتیادی، لیکن یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ آتما کیسے الگ الگ شریروں کو، چھوٹے بڑے شریروں کو سنچالت کرتا ہے. تو اور وہ بھی اس کا پروپورشن کتنا ہے، اس کا پروپورشن کا سوچئے کہ وہ دکھائی نہیں دے رہا ہے، ڈرائیور ہی دکھائی نہیں دے رہا ہے. اتنا اتنی بڑی گاڑی چل رہی ہے، ڈرائیور دکھائی نہیں دے رہا ہے. تو یہ بہت آشچرجنک بات ہے کہ یہ آتما جو ہم کو دکھائی نہیں دیتا، ہمارے اتنے چھوٹے بڑے شریروں کو یہ سنچالت کرتے رہتا ہے. اب ویگیانک جو ہیں ان کا درشٹی کون کیا ہے، جیسے یہاں پر لکھا گیا ہے، مچھلی پکڑنے میں اسفل مچھوارا سوچتا ہے کہ تالاب میں ایک بھی مچھلی نہیں ہے. اسی طرح ہم اس سے پربھاوت نہیں ہوتے کہ بھگوان نے ہمارے اندر کیا کیا بنایا ہے، اپیتو اس سے ہوتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا بنایا ہے. کوئی مچھوارا گیا مچھلی نہیں ملی، وہ کہا کہ پورے سمندر میں مچھلی نہیں ہے. ارے تم نہیں پکڑ سکے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ مچھلی نہیں ہے. جیسے وہ انترکش میں گئے تھے، وہ ایسٹروناٹس جو گئے، وہ لوگ جب واپس آئے، وہ رشین ایسٹروناٹس، تو ان کو پوچھا گیا کہ آپ بھگوان کو دیکھے اوپر کہیں؟ تو پربھوپاد کو بتایا گیا کہ ان ایسٹروناٹس نے کہا کہ نہیں، ہم نے بھگوان کو تو اوپر کچھ نہیں دیکھا، کچھ بھگوان دکھے نہیں. پربھوپاد نے کہا جب ان کو یہاں جیتے جی بھگوان نہیں دیکھے تو اور وہاں اوپر جا کے کیا دکھیں گے. تو اس لیے آتما دکھائی نہیں دیتا تو پھر ہم اس پر وشواس نہیں کریں گے. اور جیسے یہاں پر یہ ادھارن دیا گیا ہے مچھوارے کا اور اس کے مچھلی پکڑنے کا. اب یہ مہاشے جن کا نام ہے چارلز ڈارون، انہوں نے نکالا کہ یہ آتما آتما کچھ نہیں، یہ کیول شریر اپنے آپ سنچالت ہوتا رہتا ہے، اور یہ ایولیوشن تھیوری. اور ایولیوشن تھیوری میں کیا کہا انہوں نے کہ ہم سب پہلے اس پرکار کے تھے، ہمارے ونشج، ہمارے پوروج، ہم سب بندروں سے آئے اور دھیرے دھیرے اب بندر کمپیوٹر چلا رہا ہے. تو یہ ویکتی، یہ پہلے ایک بہت بڑا کرسچن تھا، اور اس کی بیٹی وہ کالرا سے مر گئی. جب اس کی بیٹی کالرا سے مر گئی تب پھر یہ ناستک بن گیا کہ یہ بھگوان وگوان کچھ نہیں ہے، میری بیٹی مر کیسے گئی. भगवान है तो फिर वो कैसे मेरी बेटी को मार दिया। तो उसके बाद में वो नास्तिक बन गया, और उसके बाद में फिर ये थियरी उसने शुरू किया कि हम सब यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म से फिर मल्टी सेल्युलर अलग अलग हमारे सेल बनते गए, और फिर वो छूट गया, फिर हम ये बन गए। पहले हम यूनिसेल्युलर थे, अब मल्टी सेल्युलर बन गए। आप लोगों ने सुना होगा या आपके बच्चों ने सुनाया होगा डार्विन के बारे में। तो अब यदि ये कहता है कि ये आत्मा आत्मा कुछ नहीं है, इसका कोई आश्चर्य वगैरह मत आप मानिए, आश्चर्य यही है कि हम कैसे एक यूनिसेल्युलर एक सेल के प्राणी से हम इतने मल्टी सेल्युलर प्राणी बन गए। तो कैसे हम बंदरों से अब इंसान बने, ये आश्चर्य की बात है। इस आश्चर्य को पहचानो, इसके अनुसार ये आश्चर्य था। तो अब यदि हम एक उदाहरण लें, उदाहरण से इसे समझें कि मारुति सुजुकी गाड़ी, हाँ, ये कौन सा मॉडल है? मारुति 800। तो यदि इसकी तुलना हम करें यूनिसेल्युलर से, ये सबसे पहला मॉडल आया था मारुति 800। तो आपने मारुति 800 गाड़ी खरीदी, हाँ, और आप चला रहे हो एक साल, दो साल, तीन साल, चार साल, दस साल बाद आपकी मारुति गाड़ी ये हो जाती है, फिर और दस साल बाद एस्टीम बन जाती है, फिर और दस साल बाद वो एल्टो बन जाती है, फिर जेन, फिर वो जो वैगन आर, जो भी ये, हाँ, तो 80-90 साल बाद आपने जो मारुति 800 खरीदी वो आपको स्विफ्टली स्विफ्ट में मिलेगी। कैसा लगता है ये सिद्धांत आपको? मारुति कंपनी को जाके बताओ कि आपकी गाड़ी का एवोल्यूशन हो रहा है इसे, कि मारुति 800 से मारुति स्विफ्ट। हां, इनमें सिमिलैरिटीज दिखेंगी आपको, है कि नहीं? सिमिलैरिटीज हैं, मारुति के जितने भी मॉडल्स हैं उसमें सिमिलैरिटी है। लेकिन यह बात कहना कि मारुति 800 मैंने खरीदी और 50 साल बाद वही मारुति 800 ये बन जाएगी, ये आश्चर्यजनक बात है, ये मूर्ख बात है, आश्चर्यजनक बात नहीं। तो इस प्रकार से वो जो एवोल्यूशन थियरी है जिसको वो इतना बढ़ा चढ़ाकर उसे सबसे आश्चर्यजनक मानते हैं, वो इस प्रकार की मूर्खता है। एज स्टूपिड एज trying to understand that one model car will change into some other. इन सबको बनाया गया, ये सब अलग अलग मॉडल को बनाया गया, ये एक मॉडल से दूसरे मॉडल नहीं बनाए, अलग अलग मॉडल्स को बनाया गया बुद्धि लगाकर। उसी प्रकार से जो अलग अलग शरीर हैं, उन सब शरीरों को प्रकृति ने बनाया है, और बहुत ही दिमाग लगाकर। अब जैसे इसमें ये मॉडल्स में आप देखो, अलग अलग जो भी फीचर्स होते हैं उन्होंने दिमाग लगा लगा के उसका क्या शेप होना चाहिए, उसका इंजन क्या कितने सीसी का होना चाहिए, ये सब कुछ दिमाग लगा के बनाते हैं ना। तो अब यदि हम देखें कि भगवान की जो प्रकृति है, क्या इसमें भगवान ने या भौतिक प्रकृति ने दिमाग लगाया है कि नहीं, इसे आश्चर्य मानना चाहिए। तो कुछ उदाहरण हम लेंगे। सर्वप्रथम यदि इस मॉडल का उदाहरण ले, जिराफ, इसके विषय में सब कुछ बताया गया है कि इसका हृदय 11 किलो का। सोचिए, इतना लंबा चौड़ा महाकाय ये प्राणी, सबसे लंबा टॉलेस्ट एनिमल, इसका 11 किलो का हृदय, इतना भारी तो इसका हृदय खाली 11 किलो, 2 फीट लंबा इसका हृदय। क्यों? क्योंकि वो जो अपना हार्ट है, हृदय है, वो ब्लड पंप करता है ना सब जगह पे, पूरे शरीर में जहां पे खून जाना चाहिए, तो ब्रेन में खून जाना बहुत जरूरी है। तो ये जो जिराफ है, इसके इसका ब्रेन देखो कहां ऊपर है, टॉप स्टोरी पे, तो वहां तक खून पहुंचने के लिए इतना पावरफुल हार्ट चाहिए इस प्राणी के लिए। जैसे पंप होता है ना, अलग अलग एचपी का पंप होता है, जितना ऊपर पानी फेंकना उतना एचपी बढ़ते जाता है ना, तो हमारा कितना बड़ा पंप है अंदर, कितना कितना ग्राम है हमारा हार्ट, कितना वेट कितना है, 350 ग्राम्स। तो 350 ग्राम्स हमारा हार्ट का वेट है, इसका हार्ट का वेट देखो 11 किलो, क्योंकि इतने ऊपर वो उसके जो मस्तिष्क में ब्लड फेंकना है इसको। तो अब ये वैज्ञानिकों ने ये सब निकाल के बताया, ये नहीं बताते कि बुद्धि लगा के उसको फिट किसने किया, बोला हम बुद्धिमान है क्योंकि हमने इसको डिस्कवर करके आपको बताया डिस्कवरी चैनल में। तो जो यदि वैज्ञानिक बुद्धिमान है, जिसने जिसने डिस्कवर किया है, तो सोचिए जिसने फिट किया वो कितना बुद्धिमान होगा। जैसे मान लो कि ये एक लैपटॉप है, ये लैपटॉप किसी कंपनी ने बनाया है, एप्पल कंपनी ने बनाया है, बुद्धि लगा के, कितनी बुद्धि लगाई होगी इसको बनाने में। और मैं इसे इस लैपटॉप को यहां पर देखता हूं, तो मैं आप सबको कहता हूं कि सारा मेडल मुझे दो, मैंने बताया ये लैपटॉप यहां पे, देखो यहां पे लैपटॉप, तो मैंने तो केवल आपको बताया है कि लैपटॉप यहां पर है, लेकिन ये जिसने बनाया है उसकी बुद्धि को आप सराहना देंगे ना। तो इसलिए ये जो लिखा गया है कि ऊपर तक वो ब्लड पंप करने के लिए इतना भारी इसका हार्ट होता है। तब उन्होंने और भी आगे पता लगाया कि जब नीचे झुकता है पानी पीने के लिए, पानी पीने के लिए तो सर नीचे करना पड़ेगा ना इसे, किसी सरोवर से पीने के लिए, तब फिर तो वो इतना ब्लड फ्लो कि इसके इसकी जो वो खोपड़ी फोड़ देगा, इतना हाई प्रेशर। हरे कृष्णा, सेलफोन, तो इतना हाई प्रेशर जो उसका खून है उसकी खोपड़ी को फोड़ देगा, लेकिन उसके अंदर वो वॉल्व्स फिट हैं, जो वॉल्व्स फिट हैं वो खून को उसके फ्लो को कंट्रोल करते हैं, और एकदम कंट्रोल्ड फ्लो जाता है। और जब तक वो नीचे है, देखिए जब तक वो नीचे से झुक के पानी पी रहा है तब तक उसका फ्लो कंट्रोल रहता है, जैसे ही वो ऊपर उठता है फिर से वो वॉल्व खुलता है और जो ओरिजिनल फ्लो चालू हो जाता है। तो अब ये अंदर वो साइंटिस्ट बैठ के सब बटन दबा रहा है क्या, कब वॉल्व बंद होना चाहिए, वो झुकता है, क्या ये आश्चर्यजनक नहीं है? ये चमगादड़, ये सीधा फोटो है, ये उल्टा रहता है हर समय, फोटो सीधा है, ये उल्टा सो सकता है, देखो इसके क्वालिफिकेशन देखो क्या क्या है, ये उल्टा सो सकता है, इसका जो ये कमरबंद है वो 180 डिग्री चक्कर मार सकता है पूरा, और घुटना विरुद्ध दिशा में घूम सकता है, देखिए घुटना विरुद्ध दिशा में, बहुत बड़ा योगी है ये मतलब। और वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि एक इतने बड़े कमरे में यदि पूरे कमरे में आप तार यहां से वहां बांध दो, तो ये इसे कहते हैं जाल प्रतिध्वनि, एकोलोकेशन, एकोलोकेशन के द्वारा ये अंधा रहता है, दिखता नहीं इसे कुछ भी, ये केवल अपने मुख से ध्वनि निकालता है और वो ध्वनि के द्वारा पता लगा लेता है कि कहाँ कहाँ जाना है, कोई सामने कोई आ रहा है, और वो किसी प्राणी को भी पकड़ना है तो इसी प्रकार से पकड़ता है, अपनी ही आवाज न सुनाई दे इसलिए कान के स्नायु बंद हो जाते और इतनी हाई डेसिबल लेवल पर उसके फ्रीक्वेंसी निकलता है कि यदि वो खुद सुनाई दे उस खुद सुने उसे तो उसके कान के पर्दे फट जाएंगे। तो जैसे वो आवाज निकालता है ध्वनि, तो उसके शटर होता है वो शटर बंद होता है जब आवाज निकालता है। जैसे हमने जिराफ का देखा, वो वॉल बंद होता है या खुलता है जब वो नीचे ऊपर होता है। तो ये जो चमगादड़ आवाज निकालता है तो इसके शटर्स बंद होते हैं ताकि इसके कान के पर्दे ना फटे, और फिर वो आवाज रिबाइंड हमारे कोई शटर नहीं है तो ये कान बंद करने पड़ते हैं। और हर एक जो है, अगर इस कमरे में 100 से ज्यादा चमगादड़ को फेंक दिया जाए, रख दिया जाए, तो कितनी आवाज निकालेंगे वो लोग? आपने सुना होगा कितने सारे चमगादड़ जो एक साथ आवाज करते हैं, तो उनका जो कीर्तन होता है पूरा, वो ऑर्केस्ट्रा, समझ में नहीं आता है कि कौन लीड सिंगर है, कौन कोरस है, कौन सा मेलेडी गा रहा है, लेकिन उनको समझ में आता है कि मेरी आवाज रिबाउंड होके आई है। अभी वो बिल्कुल भी उसमें भ्रमित नहीं होते, और यहां तक कि उनकी आवाज पानी की सतह को भी भेद के, पानी में जो मछली तैर रही उसको भी वो लोग पकड़ सकते हैं उस टेक्नोलॉजी से। तो ये चमगादड़ का आश्चर्यजनक टेक्नोलॉजी, और ये एक है जो चमगादड़ को भ्रमित करता है, ये टाइगर मौत इसे कहते हैं, ये पतंगा। इसके अंदर टेक्नोलॉजी है रडार जामिंग टेक्नोलॉजी, कि वो चमगादड़ आवाज निकालता है तो ये ऐसी आवाज निकालता है कि चमगादड़ भ्रमित हो जाता है इसकी आवाज सुनकर, कि वो उसे समझ में नहीं आता है कि ये मेरी आवाज रिबाउंड होकर आ रही है कि किसकी आवाज। तो इसके विषय में बताया गया है कि अमेरिका में जो वहां का एयरफोर्स है, वो लोग का एक पूरा विभाग है जो ये इसका निरीक्षण करते हुए इसको डुप्लीकेट करने की कोशिश कर रहा है, इसका रडार जामिंग टेक्नोलॉजी को। तो उनके वायुसेना में इसको कैसे अप्लाई करें, तो वो लोग लगे हुए हैं इसको सब एग्जामिन करते हुए। तो इसको यदि बोला जाए कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एयरफोर्स का एक पूरा विंग तुमको एग्जामिन कर रहा है, तो ये लोग तो बहुत गर्वित हो जाएंगे। अब इसके विषय में बताया गया है, ये हमिंग बर्ड के साल में 2 बार 1,000 मील उड़ता है मेक्सिको से दक्षिण अमेरिका तक, और 75 बार 1 सेकेंड में अपने पंख फड़फड़ाता है, 1 सेकेंड में 75 बार, और 24 घंटे में 25 घंटे ये लगातार उड़ सकता है। कितना? 60 लाख बार पंख फड़फड़ाता है ये, कि ये ऐसा एयरक्राफ्ट प्रकृति ने बनाया है बिना रिफ्यूलिंग के, 25 घंटा नॉन स्टॉप फ्लाइंग। तो एनर्जी देखो कितना है, 60 लाख विंग स्पैन्स, 1 सेकेंड में 75 विंग बीट्स। और वैज्ञानिक वो अपने सब आधुनिक तरीके से प्रणालियों से तैयार कर रहे हैं कि कैसे कर सकता है, और इसका वेट है 3 ग्राम, केवल 3 ग्राम। कितना एनर्जी इस 3 ग्राम के पक्षी के अंदर स्टोर्ड है। अब देखिए ये प्रकृति कितनी आश्चर्यजनक है, कि जो पक्षी होते हैं, पक्षियों की जो हड्डी होती है वो हॉलो होती है, हमारी हड्डी जो है वो पूरी सॉलिड है, लेकिन पक्षियों की हड्डी अंदर जैसे बाम्बू होता है ना, हॉलो। क्यों? ताकि ये उड़ सके। तो अब यदि एक जीव मनुष्य के शरीर से किसी पक्षी के शरीर में जा रहा है, तो वो जो अब शरीर है, वो शरीर किस प्रकार से उसका मेन मुख्य जो उसका कार्य है उड़ना, वो कैसे ठीक से उसको उड़ा सके, उसके लिए उस प्रकार से उसको शरीर वो दिलाता है, ये आत्मा। तो कितनी बुद्धि गई हुई है एक एक योनि को बनाने के पीछे। ये ऊंट का उदाहरण, कि बिना पानी के 8 दिन से ज्यादा ये रह सकता है, देखिए, एक घूंट में 130 लीटर पानी ये अंदर स्टोर कर सकता है ये ऊंट। और इसको, इसके जो दो तीन पलके होती हैं, एक वो ऐसी ट्रांसपेरेंट पलके होती हैं कि बंद होने पर भी उसको दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि जो तूफान होते हैं रेगिस्तान में, वो तूफानों में ये चलते रहे चलते रहे, और जैसे हम लोग धूप आ जाती तो हम लोग लगा लेते हैं ना धूप के चश्मे ये सब अपने आंखों को, कोई जो स्कूबा डाइवर्स जो जाते हैं वो लोग चश्मे लगाते हैं अंदर देखने के लिए। तो वैसे ये ऑटोमेटिकली फिट है, बाय बर्थ बाय डिफॉल्ट फिट है रेगिस्तान के चश्मे ये ऊंट के, और गर्मी से बचने के लिए उसके इस प्रकार का शरीर क्यों दिया गया है, उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा विज्ञान है और बुद्धि लगाई गई है कि इतना बड़ा शरीर क्यों है, क्योंकि वो अक्सर रेगिस्तान में चलते हैं। और ये मकड़ी, जो मकड़ी का जाल बनाती है, इसके विषय में बताया गया है कि स्टील से 5 गुना अधिक शक्तिशाली इसका जाल होता है। उस डायमेंशन में यदि स्टील को रखा जाए 5 times मोर स्ट्रॉन्गर देन स्टील, ये मकड़ी का जो जाल है। और इसके टेक्नोलॉजी को डुप्लीकेट कर रहे हैं, जो बुलेट प्रूफ मटेरियल बनाते हैं केवलार करके, वो इसके टेक्नोलॉजी को लोग डुप्लीकेट कर रहे हैं मकड़ी के जाल के। हाँ, ये देखिए, मक्खी जीव उसके पैरों में होती। अभी मान लो कि हमारे सामने कोई फिस्ट लाके रखे पैरों के इधर, खाओ, तो पैरों से क्या हम टेस्ट कर पाए? लेकिन ये मक्खी जो है, आप देखोगे मक्खी वो हर समय अपने वो पैर साफ करती रहती है, वो साफ नहीं, वो टेस्ट करती रहती सब कुछ उससे। सो सिंपल हाउस फ्लाई कैन टेस्ट विद इट्स फीट। ये आश्चर्यजनक बात है कि नहीं? तो सोचिए, ये मक्खी जिसके अंदर ऐसी आश्चर्यजनक टेक्नोलॉजी है, ये मक्खी के अंदर जो आत्मा है, वो आत्मा नहीं हो तो कुछ नहीं कर पाएगा मक्खी। सांप, सांप के विषय में बताया गया है कि जीभ से सूंघते हैं, ये हर समय जो वो उनकी जीभ बाहर आती रहती है ना, तो उससे वो सूंघते रहते हैं। और ये जो आपने देखा होगा मदारी जो होते हैं, मदारी बोलते हैं सपेरा, वो जो बीन बजाता है वो इसको, इनको कुछ सुनाई नहीं देता, इनके कान वान नहीं होते कुछ भी। सांप के, सांप का कोई कान वान नहीं होता, वो खाली वो जो हिलता है बीन बजाते हुए उसको देखते हुए वो भी हिलता है। तो इनके शरीर पर बहुत ही एक्स्ट्रा सेंसिटिव सेंसर्स होते हैं ये सांप के, जिसके वजह से इसे समझ में आता है कि आगे कुछ खतरा है या आगे कुछ खाने की वस्तु आ रही है। और कितना चुस्त होता है देखिए सांप अपने आप को बचाने के लिए या किसी को डंक मारने के लिए। बताया गया है कि ये जो कोबरा है, कोबरा, कोबरा का जो जहर है 1 ग्राम 150 आदमियों को मार सकता है। 1 ग्राम जहर 150 आदमियों को तुरंत खत्म कर सकता है। तो ये सब इनके अंदर ये सब कुछ फिट किया गया, अवश्य ही ये जो आश्चर्यजनक इतनी सारी योनियां हैं, हम तो सारी योनियां नहीं ले पा रहे हैं, जितनी ले पा रहे हैं के बारे में बता रहे हैं कि इनके शरीर कितने आश्चर्यजनक है। तो यहां पर पॉइंट ये है कि इनके शरीर इतने आश्चर्यजनक हैं, तो सोचिए इस आश्चर्यजनक शरीर को जो ये आत्मा चला रहा है, भगवान जो बोल रहे हैं, वो आत्मा कितना आश्चर्यजनक होगा। अब अंततः यदि हम हमारा मनुष्य देह ले, तो ये मनुष्य देह कितना आश्चर्यजनक है। केवल इस मनुष्य देह, हमारे कोई डॉक्टर यहां बैठे होंगे वो सर्टिफाई कर सकते हैं, ये मनुष्य देह कितना आश्चर्यजनक है। जैसे कि हमारा टेम्परेचर, एक बॉडी का टेम्परेचर रहता है, आप कहीं पर भी जाओ, ऐसा नहीं कि आप यदि एंटार्क्टिका में बैठे हो तो आपका बॉडी का टेम्परेचर वहां पे -60 डिग्री हो गया। वो बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहता है अपना, है कि नहीं? जैसे पंखे का रेगुलेटर है, हम जब उसको रेगुलेट करके रखते हैं, कोई करता है ना रेगुलेट, तो बॉडी का जो टेम्परेचर रेगुलेटेड रहता है। अब जैसे जब बहुत हीट अंदर हो जाती है तो अपने आप बॉडी स्वेट करता है, वो हीट रिलीज करता है, पसीना आता है वो रिलीज करता है वो टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। और जब बहुत ठंड हो जाती है बाहर तो हम कांपते हैं ना, शिवर। वो कांपने का भी, ये जो कांपने की जो क्रिया है शरीर की, ये किस लिए? तो जब हम कांपते हैं तो वो हीट जनरेट होता है, तो सर्दी से बचने के लिए अपने आप शरीर वो कांपना शुरू करता है ताकि हीट जनरेट करता है, और वो बाहर की जो ठंड है वो ठंड से वो अपने आप को बचाता है हीट जनरेट करके। और कितने सारे हमारे मैकेनिज्म्स हैं शरीर के अंदर, जैसे ही खुजली आती है तुरंत हम जानते हैं कि बिना जाने भी बिना देखे भी हम जानते हैं कि क्या करना है। फिर हम बुक्स को नहीं खोलते, अरे खुजली आ रही क्या करना, अभी छींक आ रही क्या करना चाहिए। ये किस प्रकार से ये शरीर हमारा इतना सोफिस्टिकेटेड बनाया गया है। एक और चीज कि हर एक शरीर अलग है, हर एक शरीर के आई फिंगर और टंग प्रिंट सब के अलग है। ये देखिए, इतना सा हमारा हाथ है, ये इतनी सी हथेली है, ये अंगूठा है, ये आंखें हैं, ये जीभ है। हर एक जो भी पैदा हुआ है, वो चाहे जुड़वा भी पैदा हुआ, वो जुड़वा भी जो है उनके सबके इंडिविजुअल फिंगरप्रिंट्स हैं, इंडिविजुअल टंग प्रिंट्स हैं, इंडिविजुअल आई प्रिंट्स हैं सबके। तो देखिए कितनी, हर एक को कितने सारे मनुष्य हैं। क्या आबादी क्या है विश्व की? मेरे ख्याल से 8 बिलियन, समथिंग लाइक 8 बिलियन। हाँ नहीं, विश्व की आबादी। तो विश्व के इतने मनुष्य बहुत है, चिंता मत, बहुत है, कमी नहीं है, भारत में बहुत है। हर एक का ये अलग अलग स्पेसिमेन, अलग अलग सैंपल। तो कितनी बुद्धि लगा लगा के ये हमारे शरीरों को बनाया गया है। एक और चीज मैं हाल ही में जाना कि हमारे ये नाक में स्वेल बॉडीज होते, जैसे हवा के संपर्क में जो भी वस्तु आती है जो गीली होती है सूख जाती है ना, तो ये नाक हर समय अंदर बाहर सांस लेता रहता है ना, हवा अंदर बाहर जाती रहती है, तो ये नाक हर समय वो गीला रहे उसके लिए ये दोनों नॉस्ट्रिल्स में स्वेल बॉडीज हो, 15-15 मिनट पे वो लोग स्विच होते रहते हैं कि अंदर स्वेल बॉडी हुआ वो 15 मिनट सूखने से पहले, फिर वो बंद हो जाता है, फिर दूसरा चालू होता है, फिर 15 मिनट तक वो सूखने से पहले फिर वो बंद हो जाता है, फिर ये वाला चालू होता है, फिर ये। हमको तो पता है नहीं, हम तो योगा में पूरा प्राणायाम ये वो सब अंदर बाहर कितना करते। तो ये हमारे मनुष्य देह, केवल हम हमारे कई डॉक्टर बता पाएंगे और भी, मैं तो केवल कुछ पॉइंट्स ले रहा हूं कि ये हमारा जो शरीर है कितना, इसके अंदर कितना आश्चर्य है। अच्छा, वैज्ञानिकों ने हाल ही में ये बात पता की कि ये जो पूरा हमारा शरीर, कितने अलग अलग इसमें मैकेनिज्म्स हैं। जैसे ये हार्ट काम कर रहा है, लिवर काम कर रहा है, किडनी काम कर रहा है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो हम सुनते हैं, ये पूरा ENT जो सब कुछ जो काम कर रहा है। तो ये साइंटिस्ट ये निकाले कि यदि इनको हम रिप्लेस करें, हमारे फैक्ट्री में बनाए एक किडनी, लिवर, हार्ट, जो भी पूरे ह्यूमन बॉडी को एक फैक्ट्री में बनाए, और उसको जो खर्चा लगेगा एक दिन जो फैक्ट्री मेड ह्यूमन बीइंग, ये बोले अगर फैक्ट्री मेड ह्यूमन बीइंग को एक दिन चलाने का खर्चा 8 करोड़, तो सोचो भगवान अगर बिल भेजें कि जो पैदा होने से लेके अब तक जो ये चला रहा हूं मैं हर दिन, उसका बिल तो देखिए हमारा शरीर कितना आश्चर्यजनक है इसके अंदर। और इसलिए फिर ये शरीर को चलाने वाला आत्मा जो है, जो कि सच्चित आनंद भगवान का ये जो अंश है, वो कितना आश्चर्यजनक होगा। ये शरीर को हम ठीक से जान नहीं पा रहे कि हमारा शरीर कितना आश्चर्यजनक है। इसलिए इतना सब कुछ सुनने के बावजूद, देखने के बावजूद कुछ लोग जो हैं वो समझ नहीं पाते। प्रभुपाद कहते हैं क्यों? क्योंकि वो अपने जीवन को नियंत्रित नहीं लग पा रहे। प्रभुपाद कहते हैं कि जो मांसाहार करते हैं, नशा करते हैं, जुआ खेलते हैं, अवैध संग करते हैं, जो इस प्रकार का जीवन जीते हैं, तो ये जो टिश्यूज है, ब्रेन टिश्यूज, ये मस्तिष्क की जो टिश्यूज हैं, तंतु से कहते हैं, ये ठीक से तीक्ष्ण नहीं हो पाती आत्मा को समझने के लिए। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने जो 4 नियम दिए और उसके साथ जो हरे कृष्ण महामंत्र, तो हम जब जैसे तपो दिव्यम भी कहा महाराज ऋषभदेव ने कि इस मनुष्य जीवन में हमें हमारे शरीर और हमारे आत्मा को समझने के लिए दिव्य तप करना आवश्यक है, तो बिना दिव्य तप के हम केवल पुस्तक पढ़ने से आत्मा को नहीं समझ पाएंगे। ये इसलिए बताया जा रहा है कि प्रभुपाद ने केवल भगवद गीता प्रेजेंट नहीं की, प्रभुपाद प्रेजेंटेड अ लाइफस्टाइल टू लिव दैट भगवद गीता। तो प्रभुपाद ने जो भगवद गीता प्रस्तुत की उनमें और अन्य एडिशन में अंतर क्या था कि प्रभुपाद ने उसके साथ एक लाइफस्टाइल दी कि उसको समझने के लिए। आप जब तक ये लाइफस्टाइल नहीं जिए तब तक ये आत्मा कितना आश्चर्यजनक है ये नहीं समझ पाओगे। यू रिक्वायर दैट दोस काइंड ऑफ ब्रेन टिश्यूज टू अंडरस्टैंड द सोल। इसलिए कई हैं जो अपने कुकर्मी जीवन को जीते हुए भगवद गीता को समझने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए उन्हें लगता है कि क्या कॉन्सेप्ट्स है। तो होता क्या है, वो बोलते हैं कि व्हेन दे रीड अबाउट द सोल इट इज अमेजिंग, इट इज 1/10,000 द टिप ऑफ द हेयर और ये सब सारी चीजें, तो उनकी बुद्धि में ये बात बैठ ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि जीवन अशुद्ध है और जीवन अशुद्ध होने के कारण वो बुद्धि उनकी जो बुद्धि है वो उतनी तीक्ष्ण हो ही नहीं पा रही। देखिए इस भौतिक संसार में जो बुद्धिमान व्यक्ति है, ये जरूरी नहीं कि वो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी बहुत बुद्धिमान है। जो भौतिक दृष्टिकोण से बुद्धिमान है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सबसे बड़ा मूर्ख हो सकता है वो। और जो भौतिक दृष्टिकोण से सबसे बड़ा मूर्ख है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण में सबसे ज्यादा बुद्धिमान वो हो सकता है। तो इसलिए भगवान ये सब कुछ क्यों अर्जुन को इस श्लोक के द्वारा बता रहे हैं। श्रील प्रभुपाद ये उदाहरण दिया करते थे कि यदि चावल पका हुआ है किसी बर्तन में तो कैसे आप जानेंगे एक चावल का दाने को निकाल के। तो भगवान यहां पर एक श्लोक में बता रहे हैं कि आत्मा कितना आश्चर्यजनक है, तो अर्जुन को भगवान ये संकेत दे रहे हैं कि मैं जो खड़ा हूं ना परमात्मा, मैं कितना आश्चर्यजनक हूंगा। तो मैं केवल चावल के एक दाने से बता रहा हूं, एक जीव को खड़ा करके बता रहा हूं कि कितना आश्चर्यजनक है ये एक जीव, और उस जीव का स्रोत हूं मैं। केवल एक नहीं, अनगिनत जीवों का मैं स्रोत हूं, और मैं अर्जुन तुम्हें कह रहा हूं उठ के युद्ध करो। तो इसके द्वारा भगवान एक नमूना प्रस्तुत कर रहे हैं अपने ऐश्वर्यों का। ये श्लोक प्रभुपाद ने उदाहरण दिया था कि वन ग्रेन ऑफ राइस हाउ नाइस इट इज, सो विच मीन्स दैट द स्टॉक ऑफ राइस विल रियली सैटिस्फाई अस। तो यदि हमें भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण रूपेण जानना है, इसलिए प्रभुपाद कहते थे सेल्फ रियलाइजेशन, कि सेल्फ रियलाइजेशन जब तक नहीं करेंगे तब तक कृष्ण रियलाइजेशन नहीं होगा, और कृष्ण रियलाइजेशन में सेल्फ रियलाइजेशन छुपा हुआ है। सो दिस इज द इंटरडिपेंडेंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन एंड गॉड रियलाइजेशन। हरे कृष्णा। अब भगवान अगले श्लोक में आत्मा और देह का ये जो सांख्य दर्शन है उसे रैप अप करने वाले हैं। बहुत समय से चल रहा है, और उसके पश्चात फिर 31 श्लोक से भगवान चालू करेंगे स्वधर्म के विषय में और कर्तव्य के विषय में, क्षत्रिय का धर्म क्या होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न है?